हरे कृष्ण। तो कल के प्रवचन के अंत में जहां श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री माधवेंद्रपुरी के भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, उसके अंत में एक सुंदर श्लोक लिखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। वो कहते हैं, यही तो आख्या ने कही दोहार महिमा। ये मैं आख्यान कर रहा हूं, ये सब सुंदर चैतन्य चरितामृत को ही दोहार महिमा, दो लोगों की महिमा गाने के लिए। प्रभुर भक्त वात्सल्य और भक्तेर प्रेम सीमा। एक प्रभु का भक्त वत्सलता, भक्तों के प्रति प्रेम, और भक्तेर प्रेम सीमा, और भक्तों का प्रेम का सीमा क्या है, किस हद तक भगवान भक्तों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भक्तों के प्रेम से मोहित हो जाते हैं, उनके वश में आ जाते हैं, और किस तरह से भक्तों की प्रेम की सीमा क्या क्या कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रद्धा युक्त होइया इहा सुने से यही जान। कहते हैं कि श्रद्धा युक्त होइया इह यही सुने जन, जो श्रद्धा युक्त इस कथाओं का श्रवण करता है, श्री कृष्ण चरणे से ही पाए प्रेम धन, श्री कृष्ण के चरणे में वो प्रेम धन जो श्री चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली देने आए, प्रेमापमार्थो महान, जो पुरुष पंचम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करेगा। तो ये जो चैतन्य लीला है उसमें यही वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, श्रीमती राधा रानी की भावना को ग्रहण करके आए हैं आस्वादन करने और वितरण करने, आस्वादन कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं। पूरे दिन वितरण करते थे, पूरी रात आस्वादन करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में इस सुंदर संकीर्तन में। तो उसका बहुत सुंदर से वर्णन है, कल हमने संक्षिप्त रूप में बताया, शुरुआत किया उसका। जहां कहते हैं कि भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय, भक्त गोष्ठी सहित भक्तों के संग में आकर गौरांग का जय जयकार हो। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, चैतन्य कथा जो सुनता है उसके हृदय में भक्ति प्राप्त होती है। मध्यखंड कथा भाई सुनो एक चित्ते महाप्रभु गौरचंद्र विहार ये मते। जिस प्रकार से वो विहार किए उसका श्रवण करो। एबे सुनो चैतन्य र महाप्रकाश या ही सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष। अभी आप कृपा करके चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश लीला सुनिए, जिससे सारे वैष्णवों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। क्योंकि महाप्रभु इस लीला में महाप्रकाश क्यों कहा जाता है, इसमें उन्होंने प्रकाशित किया उनका मूल स्वरूप क्या है, उनका हृदय क्या है, भक्तों का हृदय क्या है, आपस में उन दोनों का रिश्ता क्या है, इसको प्रकाशित किए इस लीला में। उनकी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, भक्तों की इच्छा क्या है, यह सुनने से हमारी इच्छा जो है भौतिक इच्छाएं होली दूर हो जाती है और सही इच्छा हृदय में आती है। सात प्रहरिया भावे लोको ख्याति यार यहां प्रभु हो लेना सर्व अवतार। सात प्रहर यानी 21 घंटे, एक प्रहर यानी 3 घंटा, सात प्रहर के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। याही प्रभु होइ लेना सर्व अवतार, सब भक्तों को अपने इष्ट देव का सारे अवतारों का दर्शन भी कराए, जिसको जिसको जो अवतार से प्रेम था वो अवतार का दर्शन कराए। अद्भुत भोजनो याही अद्भुत प्रकाश, यारे तारे विष्णु भक्ति दाने रो विलास। अद्भुत भोजन यही, जो भी उनको खिलाए सब स्वीकार किए, अद्भुत प्रकाश और अद्भुत लीला प्रकट की। और जिसने भी भक्ति के बारे में कुछ भी मांगा सबको दान दिए। राजा राजेश्वर अभिषेक से ही दिने करी लेना प्रभु रे सकल भक्त गणे। और राजा राजेश्वर अभिषेक जो सारे राजाओं के राजा सो सम्राट है उनको किया जाता है, ऐसा अभिषेक किया सारे भक्तगण, ये लीला का सार है। तो इसमें वर्णन है कि किस प्रकार साधारणतः श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के यहां ऐसे शाम के वक्त आते थे, धीरे धीरे सब भक्त लोग एकत्रित होते थे श्रीवास आंगन में, और भक्त एकत्रित होने के बाद सब दरवाजा और खिड़की बंद कर देते थे और किसी को प्रवेश नहीं था वहां, केवल उनके अंतरंग जो भक्त थे उनको। और तत्पश्चात पूरे रात भर उनका ये प्रेम संकीर्तन होता था, इसमें किसी को दूसरों को प्रवेश नहीं था, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे इस लीला को। तो इस तरह से साधारणतः श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्त के भावना में रहा करते थे, भक्त का पात्र प्रदान कर रहे थे, वो हमेशा भक्त के समान रहते थे और भगवान का गुणगान किया करते थे, हालांकि वो खुद स्वयं भगवान है। कभी कभी वो विष्णु के भाव को अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करते थे और कुछ क्षणों के लिए लीला किया करते थे, बाहे खो बैठते थे और उस समय अपना मूल स्वरूप को प्राप्त करते फिर वापस आते थे, मानो उनको कुछ मालूम ही नहीं था। पर एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ आए, सब भक्त एकत्रित हुए और चारों दिशा को देखने लगे, मतलब सूचित किए कि कीर्तन शुरू हो जाए। कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू होने के बाद आज उन्होंने ऐसा नहीं कि अपना बाह्य खो बैठे और विष्णु का भाव को पूर्ण रूप से वो विष्णु के रूप को भाव को प्राप्त हुए, अपने मूल भाव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और सीधा विष्णु के लिए जो आसन रखा हुआ था जहां शालिग्राम शिला था वहां गए, शालिग्राम को उठाए अपने गोद पे रखे और बैठ गए। सब भक्तों को मालूम हुआ कि आज श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे इच्छा को पूर्ण करने वाले। सब भक्तों की इच्छा थी उनको पूजने की, उनका गुणगान करने की, पर भक्त के भावना में होने के कारण कभी कोई उनका गुणगान करता तो विष्णु 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 ऐसा मत कहो, मैं भगवान नहीं, एक आदर्श उदाहरण देने के लिए कि कोई एक दूसरे को अपना भगवान नहीं मान सकता, ना आसान नहीं है भगवान। पर आज भक्त बड़े खुशी हुए कि आज हमारी सारे प्रार्थनाओं को हमारे सारे सेवाओं को स्वीकार करने के भाव प्राप्त किए। तो बैठे और सब भक्त को उद्देश्य करते मतलब देखते हुए कहे, अभिषेक का गीत गाओ। भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए, और जब भगवान को जब अभिषेक करते पुरुष सूक्त प्रार्थना, तो कोई पुरुष सूक्त गाने लगा, दूसरे लोग अभिषेक के अलग अलग भजन होते हैं, अलग अभी अलग हर एक वैदिक संस्कृति में हर एक समय के लिए अलग अलग गीत होता है, अलग अलग सुर में, अलग अलग राग में, अलग अलग ताल में अलग अलग गीत होता है। ऐसा नहीं कि सुबह रात का ताल क्या बोलते हैं राग। प्रभुपाद जी भी भजन कीर्तन जो हम लोग करते हैं उसका एक राग होना चाहिए, एक ताल होना चाहिए। सुबह का एक राग होता है मॉर्निंग ट्यून, खास करके प्रभुपाद जी ने बोला, बोले मंगल आरती मतलब मॉर्निंग ट्यून। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जाते थे उसमें उदिल अरुण पूरब भागे और दूसरा कीर्तन कौन है, जीव जागो जीव जागो, ये ट्यून सुबह का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक्चुअली मॉर्निंग ट्यून है, सुबह, शाम को नहीं। तो हर एक समय का एक राग होता है ताल, तो हर एक संदर्भ के लिए भी आरती के समय एक अलग। तो जब अभिषेक करते हैं, अभिषेक का गीत है, लोग ब्रह्म संहिता गाते हैं और पुरुष सूक्त प्रार्थना गाते हैं। भगवान का जब अभिषेक होता है पुरुष सूक्त ब्रह्म संहिता इत्यादि गाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बोला अभिषेक का गाना शुरू हो तो सब पुरुष सूक्त गा रहे हैं, अलग अलग भजन, सुंदर भजन होते हैं अलग अलग समय के लिए, तो वो लोग गाना शुरू किए। कृष्ण जन्म में भी वर्णन है, सूत मागद वंदिनः, वंदी वंदी मतलब उनको मालूम है कौन कौन से समय में कौन कौन सा प्रार्थना गाया जाता है, तो इस तरह से वो शुरू किए। और अभिषेक, फिर थोड़े समय के बाद भगवान ने सूचित किया कि वो अभिषेक किया जाए, तो भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान आज तक कभी ऐसा स्वीकार नहीं किए थे, सबको मालूम है कौन है, पर एक आदर्श उदाहरण के लिए कभी वो अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते थे, पर आज खुद अपने वो कह रहे हैं, तो भक्त इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत गए और घड़े लेकर सैकड़ों नहीं हजारों मटकों में, बड़े बड़े मटके में गंगा जल ले आए, छाने उसको, और छानने के बाद भगवान को अभिषेक कराया लगातार सैकड़ों हजारों घड़े में लाए और दिल भर के। डायरेक्टली भगवान का अभिषेक कभी नहीं मिलता है, श्री विग्रह का अभिषेक मिला तो भी हमको बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए, हमको, हम उसके योग्य नहीं है। अगर डायरेक्टली भगवान आए बोले मेरा अभिषेक करो, बहुत ही सौभाग्य है। उस अभिषेक का एक बूंद पानी भी कोई अगर उनपे अभिषेक किया तो उसका जीवन सफल हो गया। ब्रह्मा शिवजी को भी नहीं मिलता ऐसा, आरती करे ना ब्रह्मा आदि ब्रह्मदेव शिव आदि गणे, बहुत ही दुर्लभ चीज है। भक्त लोग इतने प्रसन्न हो गए, जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है ऐसा चीज महाप्रभु ने श्रीवास के दास दासियां सब मदद कर रहे थे इस अभिषेक में, और सब अभिषेक हुआ। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो प्रमुख वरिष्ठ जो थे वो अभिषेक करने लगे, और दूसरे लोग अलग अलग ला के मदद करने लगे उनको, और अभिषेक, फिर अलग अलग वो भी आए, वो लोग भी अभिषेक किए, इस तरह से अभिषेक चला। और कहा गया है चैतन्य भागवत में, इस अभिषेक का फायदा उठाकर कई देवतागण भी मनुष्य रूप लेके आए और वो लोग भी अभिषेक करके चले गए, उसका फायदा उठा लिए वो। तो ये अभिषेक के दौरान जो कई समय तक चलता रहा, एक बहुत ही सुंदर घटना घटी जो वृंदावन दास ठाकुर के स्वयं के मुखारविंद से मैं सुनाना चाहता हूं। श्रीवास से रास दासी गणे अनेज आने जल, प्रभु स्नान करे भक्त सेवर ए फल। कहते हैं कि श्रीवासेर दास दासी गणे आने जल, वो लोग भी भगवान के अभिषेक के लिए जल ला रहे थे। प्रभु स्नान करे भक्त सेवार ए फल, प्रभु का स्नान के लिए वो भी जल ला रहे थे, और भक्त के सेवा का यही फल है। भगवान के शुद्ध भक्तों का हमको सेवा मिल जाए तो वो ये फल है कि डायनिंग तो ऐसा नामुमकिन है हमारे लिए। तो शिवाज ठाकुर के जो दास दासियां थी उनके घर में जितने नौकर नौकरानी थे वो लोग भी लाए, वो भी भगवान को स्नान करने में मदद कर रहे थे। जल आने एक भाग्यवती दुखी नाम, आपने ठाकुर देखी बोले आन आन। एक बहुत ही सौभाग्यशाली नौकरानी थी शिवाज ठाकुर की जिसका नाम था दुखी, और वो भी घड़ा में भर भर के लाके अच्छे तरह से सजा रही थी वो, और चैतन्य महाप्रभु बोले हां लाओ 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 लाओ। आपने ठाकुर तार भक्ति युग देखी, दुखी नाम घुचाइया थुई लेना सुखी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दुखी की भावना देखी, सेवा का भावना, उन्होंने दुखी का नाम बदलकर उसे सुखी नाम दिया। और जैसे उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम सुखी है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भर दिया, सच्चा सुख और आनंद का अनुभव होने लगा उसे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये लीला जो है न केवल श्रवण करना है, बल्कि इसमें से भगवान बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें सिखाते हैं। क्या सीखना है हमें? कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा सेवा चाहिए जो सब लोग देखे और हमें सबको पता चले कि कौन सेवा किया है। स्वाभाविक है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारा वो अहंकार है, वो जाता नहीं इतना आसान से। भक्ति में आने के बाद भी वहां भी हम उसका यश लेना चाहते हैं, स्वाभाविक है। पर यहां हम देखते हैं कि भगवान जो हैं, दुनिया जाने या ना जाने, पहचाने या नहीं पहचाने, समझे या ना समझे, पर भगवान हृदय की भावना को देखते हैं, उसकी वो प्रामाणिकता को देखते हैं। कितना हमें ये क्या बोलते हैं, ये देता है, सांत्वना देता है हमें, वाह। क्योंकि आज के दुनिया में अगर कोई काम करता है, बाहर के दुनिया में अगर काम कर रहा है, कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो भले आप पूरा दिन भर काम किए हो और जब बॉस आया शाम को, उस समय थोड़ा आपको नींद आ गया था, पकड़ा गया, सो रहा, तू सोते रहता है, शायद आपको काम से हटा भी दिया जाएगा। आपकी भावना बड़ी अच्छी हो, बहुत सारे काम किए हो, और दूसरा आदमी कुछ करता नहीं है, पर जब बॉस आता है, गेट के पास आता है, खड़ा होकर बहुत अच्छा दिखाता है, और बॉस वाह बहुत अच्छा है, वेरी गुड, हमको बहुत बुरा लगता है, समझता नहीं है आदमी मैं कितना सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे स्थिति में रहने के बाद जब हम किसी तरह से भक्ति में आते हैं तो वही बुद्धि यहां भी ले आते हैं, तो हमको भी लगता है कि यहां भी कुछ ऐसा सेवा हमको चाहिए जो पूरी दुनिया देखे। जो भी सेवा मिला नहीं, पर यहां हम देखते हैं कि दुखी वो कहीं पीछे वो लाके रख रही थी, और भाई कई सारे भक्त लोग डायरेक्ट अभिषेक कर रहे थे, उनको मौका मिल रहा था, वाह डायरेक्ट अभिषेक, और दूसरे बेचारे वो बर्तन साफ करना, पीछे से लाके रखना। पर महाप्रभु बाहरी रूप से नहीं देखते, वो अंतरंग से दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण है, तब भक्त को पहचानते हो। इसीलिए हम कभी एक भक्त को जज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हम। एक भक्त हमसे थोड़े समय, एक दिन, चार दिन पहले हमारे एक प्रश्न पूछा किसी ने, प्रभु जी आप कहते हो कि भक्त को जज नहीं करना चाहिए, तो ये सही है क्या? बोला हां सही है। तो पर कभी कभी हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के भक्त लोग होते हैं, कुछ मायावादी लोग होते हैं, कुछ अलग, तो क्या उसको देखना नहीं चाहिए? कुछ देखना नहीं चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, बोला नहीं करना चाहिए, बोले आप बोले नहीं करना चाहिए और अभी बोल रहे हैं करना चाहिए। नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जज करना जरूरी है, इसलिए तो कहते हैं उपदेशामृत में स्यात् कृष्णनाम कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणति भिक्ष भजन्तम ईशम। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। जो दीक्षा लेकर सेवा कर रहा है भगवान की गुरु के आज्ञा के अनुसार उसको झुककर प्रणाम करना चाहिए। और जो पूर्ण रूप से शुश्रूषया भजन विघ्नम अनन्य निंदादि शून्य, जिसके हृदय में दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से चली गई है, यानी ईर्ष्या भाव है ही नहीं। हम किसी की निंदा करते हैं इसका मतलब हमारे अंदर वो ईर्ष्या भाव है, किसी की निंदा करना ये ऐसा है वो ऐसा है। क्यों क्यों स्वाभाविक रूप से हम निंदा करते हैं? निंदा करने का उद्देश्य यह है कि हमारे अहंकार को लगता है कि ये अगर मेरी निंदा करेगा इससे पहले मैं उसको निंदा कर दूंगा ताकि उसका कोई सुनेगा ही नहीं। अगर वो मेरे बारे में कुछ कहेगा तो पहले से मैं कह के रहूंगा ये ऐसा है, और वो अगर मेरे बारे में कुछ कहेगा कोई चिंता नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करेगा उसको। तो ये स्वाभाविक है। तो निंदादि शून्य, जो जिसके हृदय में निंदा करने की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से चली गई है, ऐसे शुश्रूषया ईप्सित संगलब्ध्या, उसकी ध्यान से उस ऐसे व्यक्ति से श्रवण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के संग की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। तो हमें भेदभाव करना जरूरी है थोड़ा बहुत। क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है देखेंगे, नहीं, ये हमारा काम नहीं है, वो भगवान का काम है, तुम्हारा काम नहीं, इट्स नॉट योर बिजनेस कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ज्यादा प्रगतिशील है कौन कम है, वो हमारे काम नहीं। पर हमें भेदभाव इसलिए करना है ताकि हम जाने कि इस व्यक्ति की सेवा हम कैसे करें, क्योंकि अलग अलग स्तर के अनुसार हमारा सेवा अलग होता है। हमारा मेन कार्य है सेवा करना, पर सेवा करने के लिए कैसा सेवा करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति कौन है जानेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे, इसलिए जानना है। अगर हमसे वरिष्ठ है तो उसकी सेवा कैसे करेंगे, उससे सुनेंगे और उसकी सेवा करेंगे, उसको जो जरूरी है सेवा करेंगे। अगर हमारे समान है तो उसकी सेवा कैसे करेंगे, मित्रता करेंगे और हृदय से खोलेंगे और सुनेंगे, दोस्ती करेंगे। और हमसे अगर कनिष्ठ है ज्ञान में तो उसकी सेवा कैसे करेंगे, उनको हम जो हमको ज्ञान मिला है वो बांटेंगे दे के। तो सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर किस प्रकार से सेवा करें तब जानेंगे, जब हर व्यक्ति का स्तर क्या है जानेंगे, इसलिए हमको जानना चाहिए और कुछ नहीं। नहीं तो भगवान वो जानते हैं, वो देखेंगे, सबके हृदय जानते हैं कौन क्या है कौन कैसा है। कोलावेच श्रीधर का हम पढ़ेंगे बाद में, भक्तों के समाज में कोई यही जानता था कोलावेच श्रीधर कौन है, पर जब महाप्रभु ने उसको बुलाया तब लोगों को समझ में आया ओ इतना महान भक्त ही है, हम नहीं जान सकते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा इस लीला से मिलती है हमें। तो इस तरह से दुखी को सुखी नाम देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसके बाद अलग अलग अभिषेक का सामग्री, पहले गंगा जल से स्नान कराने के बाद 16 अलग अलग प्रकार के षोडश उपचार कहते हैं उसको संस्कृत में, अलग अलग प्रकार की सेवा, धूप दीप नैवेद्य आरती ऐसा कहते हैं, ऐसे षोडश 16 प्रकार के होते हैं, उसका वर्णन है यहां बहुत सुंदर से। पूजा रस सामग्री लाई सर्वभक्तगण, पूजित लागिला निज प्रभुर चरण, पाद्य अर्घ्य आचमन गंध पुष्प धूप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा अनुरूप। इस तरह से अलग अलग षोडश उपचार कहते हैं। जैसे पाद्य, कोई एक अतिथि आता है तो कैसे सेवा करना है, ऐसे भगवान जब आते हैं पहले पहले पाद्य, पाद्य मतलब भगवान के चरण को धोने के लिए, इदम पाद्यम, पहले पाद्य, फिर अर्घ्य, अर्घ्य यानी हाथ में कुछ मंगलमय चीज देना, फिर आचमन मुंह धोने के लिए, फिर गंध सुगंधित कुछ, हम लगाते हैं ना कुछ फ्रेग्रेंस सेंट लगाते हैं, गंध, फिर पुष्प, फिर धूप, फिर प्रदीप दीप जलाना, फिर नैवेद्य, फिर वस्त्र, इस तरह से अलग अलग धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि। तो इस तरह से षोडशोपचार उसको कहते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु का उन्होंने षोडशोपचार किया और इस तरह से चल रहा था। और थोड़ी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, फिर उनको स्नान कराने के बाद उनको बहुत अच्छे तरह से कपड़ों से उनको एकदम वस्त्रम वस्त्र देके सुखाए, सुखाए के बाद नए वस्त्र दिए उनको, नए वस्त्र देने के बाद उस आसन को फिर से बहुत सुंदर से साफ किए, अलंकार किए और उसके बाद उनको वापस उस विष्णु के आसन पे बैठाया। बैठाने के बाद कीर्तन हो रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे अब खिलाओ, भगवान खुद मांग रहे, बोली। जनरली हम लोग खिलाते, हमको गारंटी नहीं खाए कि नहीं, नहीं भगवान, क्योंकि हमारे अंदर वो भक्ति है कि नहीं, पर यहां डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं मुझे खिलाओ कुछ, भूखे हैं भगवान, ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रेम के भूखे। तो बोले खिलाओ, भक्त लोग इतने आनंदित हो गए, बोले वाह आज भगवान खुद मांग रहे खिलाओ। सब भागे 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 गए और सबसे पहले तो गंगा जल लाया, फिर से सैकड़ों घड़े में लाए, एक क्षण के अंदर उस घड़े को उठाते महाप्रभु पी जाते, ऐसे सैकड़ों घड़े लाए। फिर भक्त लोग भागे भागे, हजारों केले के गुच्छे होते हैं, डजन, एक डजन नहीं, ऐसे बड़े बड़े गुच्छे केले के, हजारों हजारों लोग ऐसे, अरे हजारों हजारों केले के गुच्छे लाए और तुरंत, ऐसा नहीं कि चार घंटा लगा एक एक को छीलने, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने खत्म कर दिया, बोला और मैं खाना चाहता हूं खिलाओ। भक्त लोग गए और बड़े बड़े बर्तन में, हंडियों में भर भर के दूध लाए, तुरंत तुरंत पे लिए, बोले और दही लाए, घी लाए, मक्खन लाए, जो भी लाते खत्म होते। उसके बाद कहे और, जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने किया, अनियोर अनियोर। तो फिर भक्त लोग भाग के गए और नारियल लाए और नारियल का सब निकालकर उसमें शक्कर डालकर वो खिलाए, और ऐसे हजारों हजारों नारियल, तो तुरंत खत्म कर दिए, बोले और। फिर बहुत सारे मिठाइयां लाए, अलग अलग प्रकार के संदेश, रसगुल्ला, अलग अलग प्रकार के, बंगाल में जितने सारे मिठाइयां होते सब महाप्रभु ने एक क्षण में फटाफट ले लिए, बोले और। फिर गन्ना वहां बढ़ता है, गन्ना ले आए, गन्ने का रस, गन्ने का रस पिए भगवान। इस तरह से पूर्ण रूप से भक्तों को, मतलब भक्तों को कभी कभी खिलाने की बहुत इच्छा रहती है, पर भगवान को, भगवान की, भक्तों की पूर्ण करने की इच्छा जो है असीमित है, भगवान का जो कैपेसिटी है असीमित है, क्षमता असीमित है, पर हमारी सेवा करने की क्षमता जो है वो सीमित है। कितना कर सकते हैं हम लोग, कहां कहां से भाग के क्या क्या लाएंगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अरे भगवान का गुणगान बड़े आकाश जैसा है, अनंत आकाश जैसा है, और हमारा गुणगान करना, अगर मैं एक घंटे में, दो घंटे में भगवान का गुणगान करना चाहूं, दो घंटे में ये एक छोटा सा मुंह 2 इंच का और 450 ग्राम का दिमाग, इसमें मैं क्या गुणगान कर सकता हूं दो घंटे में, छोटी सी बुद्धि एक बू। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हमारा भगवान का गुणगान करने का प्रयास जो है वो एक छोटी सी पक्षी के समान है। अच्छा, एक पक्षी अनंत आकाश को क्या नाप सकता है? वो नहीं, अपने यथाशक्ति वो आकाश में उड़ेगा और कहेगा उड़ गया, बहुत ऊपर गया आज मैं। पर एक पक्षी आकाश में कितना ऊपर जा सकता है? इसी तरह से हमारा भगवान का गुणगान करने की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है। और अगर भगवान हमारे गुणगान करने, हमारा गुणगान स्वीकार करना चाहे, कितना कर सकते हैं हम लोग? वही जब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गुणगान करने की इच्छा रखते हैं तो कभी कभी कहा जाता है कि ऐसा गुणगान किए अपने भक्तों का, हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का, मानो उनके पांच मुंह हो, एक साथ बोल रहे हो। कुछ भक्तों का जब गुणगान करते थे मानो हजार मुंह उनके हो, इतने प्रेम से गुणगान किया करते थे। अनंत शेष, अनंत काल से, अपने अनंत मुख से भी अगर भगवान का एक दिन का लीला गुणगान करे तो भी उसकी सीमा को पहुंच नहीं सकता। तो इस तरह से भगवान ने उस दिन सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए खिलाओ, अंत में देखे कि सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद ऑफ कोर्स भगवान प्रेम से तृप्त हो जाते हैं, क्वांटिटी से नहीं। तुम कितने लगाए उतना नहीं, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख साक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी। तो जो विदुर ने प्रेम से खिलाया तृप्त हो गए, तो इस तरह से उनके प्रेम से भगवान तृप्त हो गए। तत्पश्चात भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन किया कि किस प्रकार त्रिकालज्ञ है वो, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के ज्ञाता है। इसका दर्शन कराते हुए अपने भक्तों को याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह हमेशा अपने भक्तों का वो संरक्षण करते हैं और अपने भक्तों की भक्ति का वर्धन करने में मदद करते हैं। श्रीवास की ओर मुड़े, एक एक भक्त को भी उनके पुराने, मतलब चैतन्य महाप्रभु इस समय कितने थे, 21-22 साल के थे और श्रीवास ठाकुर तो 50-60 साल के थे, अद्वैताचार्य भी 60-70 साल के थे, हरिदास ठाकुर भी 60 के साल, बहुत उम्र में थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही कितने लोग थे और उनके पिछले, मतलब जीवन में जो कुछ भी घटना घटी थी उसका उन लोगों को याद दिलाने लगे, जो किसी को नहीं मालूम था, किसी भक्त को, उनके परिवार के सदस्यों को भी जो नहीं मालूम था, उनके हृदय में वो लोग जो रखे थे भक्तगण, उनको याद दिलाने लगे। तो श्रीवास ठाकुर को कहने लगे कि अपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौर चंद्र किमते खाएदा नाही जने भक्त वृंद, की अपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरचंद्र, ऐसा अपूर्व शक्ति प्रदर्शन किए के मते खाएना नाही जाने भक्त वृंद। अरे कैसे इतना खाए, भक्त वृंद कभी जान नहीं पाए, पर स्वीकार किए, बस भगवान स्वीकार किए, इनको इनको उन्होंने स्वीकार किया उसे। भक्तेरो पदार्थ प्रभु खाएना संतोषे, खाइया सवार जन्म कर्म कहे शेषे। तो बड़े संतोष के साथ सब पदार्थ जो उन्होंने अर्पण किया था उसे स्वीकार किए और खाइया, सब खाने के बाद सवार जन्म कर्म कहे शेषे, अंत में हरेक के जन्म और कर्म, पुराने कर्म जो है वो सब उनको याद दिलाने लगे। तत्क्षणे से ही भक्तेर हए ये स्मरण संतोषे आच्छाद खाए करो ये क्रंदन। और ये जब याद दिलाते थे तो एक एक भक्त भी जो स्मरण करता था अपने पिछले क्रियाओं को तो प्रेम से वो गदगद होकर जमीन में लुढ़कने लगता था। शिवा सेरे बोले आर पड़े तोर मने भागवतो सुनिला ये देवानंद स्थाने। शिवास ठाकुर को बोलने लगे, शिवास तुम्हें याद है, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ने की तुम्हारी बहुत इच्छा थी और तुम एक बार देवानंद पंडित के यहां गए थे। देवानंद पंडित भागवत कथा बोलने में प्रसिद्ध था वो, तो उनके यहां सुनने गए शिवास ठाकुर, और शिवास ठाकुर को भागवत के प्रति इतना आसक्ति थी कि एक एक श्लोक में भी वो रम जाते थे। तो जब उन्होंने देवानंद पंडित के मुख से एक श्लोक सुना भागवत का, तो वो रोने लगे, जमीन पे लुढ़कने लगे दिव्य आनंद से। पर उनके शिष्यों ने, देवानंद के शिष्य जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये क्या आदमी बहुत गड़बड़ मचा रहा है यहां। तो उन्होंने, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और सीधा ऐसा उठा के ले गए और रास्ते पे उन्हें फेंक दिया। और देवानंद पंडित ये देख रहा था, पर देवानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला। अपने शिष्यों को ये कार्य करते हुए देखते हुए भी देवानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला। एक महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी चैतन्य भागवत में ये सुनाते हैं, देवानंद इथेना करिला निवारण गुरु यथा आज्ञा से मत शिष्यगण। तो इस तरह से कुछ भी हम कार्य करते हैं उसकी जिम्मेदारी जाती है या उसका यश या अपयश जाता है गुरु के लिए। हमें बड़ा होशियार होना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। जैसा कोई लड़का, कुछ छोटा लड़का अगर कुछ इधर उधर मस्ती कर रहा है, ए कौन सा मुल्गा है ते किसका लड़का है वो, और कुछ हुआ किसने किया के कौन कहलाते, ए तांचा मुल्गा उसका लड़का, तो बाप को, और कुछ किया कौन कौन फर्स्ट आया, अरे वो उनका लड़का। तो दोनों यश और अपयश जो है वो माता पिता को जाता है या गुरु को जाता है। शिष्य के रूप में जो हम कार्य करते हैं वो गुरु को जाता है। तो एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम तिलक और कंठी माला लगाते हैं, इसका मतलब हमने झंडा फहराया है घर के ऊपर। एक शरीर एक मंदिर के समान है, मंदिर के ऊपर झंडा लगाए, ऊर्ध्व पुंड्र और कंठी माला। जैसा समझ लीजिए ओलंपिक में, ओलंपिक गेम हो रहा है और वहां हर एक कंटिंजेंट, एक एक टीम आती है ऐसा मार्चिंग करते हुए, हर एक अपना देश का झंडा लेके, बैंड बजता रहता है और हर एक मार्चिंग करते हुए आते। अभी कनाडा आया, अभी अमेरिका आया, और ये आया, अभी इंडिया आया। और जब इंडिया सब जा रहा था, उसमें एक किसी ने उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ी की, तो लोग नहीं बोलेंगे कौन था वो, कौन सिंह था, वो बोलेंगे कौन था वो, भारत वाला कोई, तो इंडिया ने मस्ती ऐसा किया। क्यों? क्योंकि झंडा जो लेके जा रहा है वही बोलेंगे। तो हम कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा वाला। तो कंठी और तिलक लगा के बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम जो भी करेंगे लोग कहेंगे ये वैष्णव लोग सब ऐसी है, देखो कलीर चेला गलेर कंठी हाथेर माला, और पीछे जाके बीड़ी फूक रहा हूं तो कार्यकलाप हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक प्रतिनिधि के रूप में अगर कंठी पहन रहे हैं भगवान के प्रतिनिधि, वैष्णव मतलब ये विष्णु का भक्त ही है अभी, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। और खास करके प्रभुपाद के ऊपर ज्यादा है, कौन ये हरे राम हरे कृष्णा वाले। इसी तरह से जो भी हम करते हैं, कौन है तुम्हारा गुरु, क्या सिखाया तुमको, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और देवानंद पंडित ने रोका नहीं, तो दोष किसका हो गया, देवानंद पंडित का हो गया कि उस अपराध को देखते भी उसने सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं, वो भी ऐसे था और इसलिए वो भी नहीं पहचान पाया। तो शिवास पंडित को महाप्रभु याद दिलाते, तुम्हें मालूम है इस तरह से तुम्हें फेंक दिया गया, और थोड़े समय के बाद जब तुम बाह्य होकर वापस बाह्य वापस प्राप्त किए, तुम्हें बहुत बुरा लगा, और तब तुम वापस घर गए, और घर जाकर तुमने भागवत खोला और भागवत के श्लोकों का आश्रय लेने का प्रयास किया, और उस समय तुम्हें मालूम है शिवास, तुम्हें ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, और उसके बाद आज तक जब भी तुम भागवत का एक श्लोक भी पढ़ते हो, तुम्हें बहुत दिव्य आनंद का अनुभूति होती है। आज मैं तुम्हें बता दूं, जब उस समय तुमने देवानंद पंडित के घर से जाकर भागवत खोला अपने घर में, तब मैंने तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया और तुमको वो दिव्य आनंद का अनुभूति कराया। जब शिवास ठाकुर ये सुने, आंखों से आंसू आने लगे, जोर जोर से रोते हुए लुढ़क के गिर गए महाप्रभु के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक। फिर इस तरह से अलग अलग लोगों को बता रहे थे। फिर गंगादास पंडित चैतन्य महाप्रभु जब नवयुवक थे निमाय पंडित के रूप में, तब गंगादास पंडित उनके शिक्षक थे, पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना भक्ति स्वरूप दिखाया, अपना स्वरूप, तब वो एक्चुअली शरणागत हुए थे पूर्ण रूप से निमाय पंडित को जानते हुए कि ये कौन है, शरणागत हुए थे। तो गंगादास पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु ने याद दिलाया, गंगादासे देखी बोले तोर मने जागे, राज भय पलाई जबे जबे निशा भागे। गंगादास की ओर मुड़कर बोले, तुम्हें याद है कि एक रात तुम भाग रहे थे क्योंकि जो म्लेच्छ राजा है अपने सैनिकों के साथ इस गांव पे आक्रमण किया और सबके पीछे पीछे भाग रहा था, और तब उस घाट पर तुम आए तुम्हारे परिवार के साथ, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे और ये म्लेच्छ सैनिक लोग तुम्हारे परिवार के पीछे लगे हुए थे, और तुम निश्चित मतलब तुम जानते थे कि वो शायद न केवल तुम्हें मार डालेंगे, बट तुम्हारे जो परिवार के सदस्य हैं स्त्रियां उनके ऊपर भी बलात्कार करेंगे। वो भय से तुम भाग रहे थे और नदी के तट पर आए और वहां बहुत नाव ढूंढ रहे थे, पर पूरी रात तुमने वहां रात देखा और एक भी नाव नहीं मिला तुम्हें, और तुम इतने तकलीफ से मतलब चिंतित थे कि तुमने अंत में सोचा कि मैं अपना जान दे दूंगा, गंगा में डूब के मैं मर जाऊंगा, ये सब देखने से पहले मैं गंगा में डूब के मर जाऊंगा, याद है तुम्हें? और जब तुम ऐसे सोच रहे थे, तुमने देखा कि एक नाविक वहां आया एक नाव लेकर, कहीं से एकाएक आ गया वहां, और तुमने उसे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, सारा धन देने के लिए तैयार, मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं, कृपया हमारे परिवार को तुम उस पार ले जाओ, और तुम्हें वो उस पार ले आया था, तुम्हें याद है? और तुम उस नाव और उस नाविक को देखकर कितने प्रेम बहुत प्रसन्न हुए थे। सुनो, उस समय क्योंकि वो कहते हैं, हां वो मैं था, उस समय वो मैं था जब आया वहां प्रकट हुआ और तुम्हें पार कराया। ये सुनकर गंगादास अपने दिव्य आनंद को और आंसुओं को नियंत्रण नहीं कर पाए और रोने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई लोग भक्तों को अपने पिछले कार्य के बारे में उनको सुना रहे थे। तत्पश्चात श्रीधर की कुछ लोग वहां थे, कुछ लोग नहीं थे, बोले श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर कौन? कितने को मालूम ही नहीं था कि श्रीधर कौन है, पर हम देखेंगे इस कथा के दौरान कि वो श्रीधर कितना प्रिय था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को। बोले श्रीधर को बुलाओ, तो बोले भक्त लोग नहीं पहने, बोले जाओ। आधी रात थी, वो शुरुआत हो गई थी, अभिषेक हुआ था अभी से 8, तो ऑलमोस्ट लाइक आधी रात। बोले जाओ रात, बोले जाओ मार्केट में जाओ, और जैसे जैसे तुम गुजरोगे वहां से, जोर जोर से जब तुमको ये भगवान के नाम सुनाई देंगे तो समझ लेना वही श्रीधर है, उसको पकड़ के ले आओ। क्योंकि पूरी रात वो हरिनाम करते रहता जोर जोर से। तो भक्त लोग गए और ढूंढते ढूंढते गए और वहां सुना, उन्होंने आवाज सुनाई दिया, जोर जोर से हरिनाम कर रहा था। तो उसको गए और बोले आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। श्रीधर विश्वास नहीं कर पाया, क्या महाप्रभु मुझे बुला रहे? वो बेहोश होकर गिर गया एकदम, इतना नम्र था। वो बोला क्या मैं तुच्छ व्यक्ति को महाप्रभु बुला रहे? बेहोश। फिर प्रेम से उसको उठा के ले आए सीधा महाप्रभु के सामने, उनको रखा, महाप्रभु उनको उठाए और बोले उठो श्रीधर और देखो। श्रीधर उठा और देखा तो श्री चेतन महाप्रभु बहुत सुंदर त्रिभंग श्री कृष्ण का स्वरूप दर्शन किए, कृष्ण और बलराम। और श्रीधर देख रहा था, कृष्ण और बलराम खड़े हैं और पूरा चारों ओर देखा, वृंदावन में है वो, बहुत ही सुंदर लताएं कुंज, और यहां शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि खड़े हैं, सुखदेव खड़े हैं, चतुष्कुमार खड़े हैं, सब लोग गुणगान कर रहे हैं, सारे देवतागण गुणगान कर रहे हैं भगवान का। तो नियंत्रण नहीं कर पाया अपने आप को, जोर जोर से रोने लगे, अयोग्य, अपने आप को योग्य मानकर बेहोश हो गए। फिर वो महाप्रभु उनको उठाए और इस तरह से उनको याद दिलाने लगे, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें तंग किया करता था। जब निमाई पंडित थे वो, उनका नियम था, जैसा हमारा नियम है ना, दिन में कम से कम 16 माला, उनका नियम था महाप्रभु का, निमाई पंडित का, कम से कम 2 घंटा श्रीधर के पास जाते थे। और कोलावेच श्रीधर, कोला, कोला मतलब केला, कोलावेचा मतलब जो केला बेचने वाला। अब बंगाल में केला सबके घर में, केला केला ही केला है वहां, सर्वम केलमयम, पूरा बंगाल केला का केला बहुत ज्यादा झाड़ रहता है, तो जरूरत नहीं पड़ता लागत लोगों को। तो वो केला बेचता था, मतलब ज्यादा बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था वो, तो केले के डंडे, केले के पत्ते का द्रोण बनाकर और केला सेरे, केले के जो भी सामग्री है वही बेचता था कोलावेच श्रीधर। तो महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में आते थे और सज धज के आते थे और उसके पास खड़े होते थे और उसको इतना हैरास करते थे, हैरान करते थे 2 घंटा। और ये श्रीधर ऐसा था, इतना सत्यवादी था वो, बिजनेस में था पर इतना युधिष्ठिर महाराज जैसा सत्यवादी, एकदम सबसे पूरे मार्केट में सबसे कम रेट उसके पास मिलता था, सबसे कम रेट, मतलब उससे ज्यादा प्रॉफिट कोई, उससे ज्यादा मतलब मार्जिन कोई रख ही नहीं सकता, उससे कम इतना मार्जिन रखता था वो। और उसमें भी जो पैसा मिलता था उसका एग्जैक्टली 50% 50% निकालकर गंगा जी की पूजा करता था वो हर शाम को। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई है, चरणामृत के रूप में, विष्णु का भक्त विष्णु के इस भगवान की चरणामृत मानकर गंगा जी की पूजा करता था। और बाकी जो मिला, सबसे पहले कुछ मिलता नहीं था, जो भी मिला उसमें आधा उधर गया और बाकी आधा में जो कुछ होता था वो जीवन निर्वाह करता था। इतना गरीब लगता था वो बाहर से, फटे कपड़े, उसमें पैचेस ज्यादा थे कपड़े कम थे, और उसके छत भी इतने सारे छेद थे, बारिश में हमेशा बारिश गिरता रहता था ऊपर से। पर श्रीधर को कोई चिंता नहीं, आराम से निश्चित रहता था। पर महाप्रभु उसी के पास आते थे और 2 घंटा हैरान करते थे उसको, बोलते थे तू बहुत धोखा देता है तू, अरे मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलने का, दो मुझे। और इस तरह से वो बोलता था, नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इससे कम मैं नहीं दे सकता। बोले नहीं 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 कम दे, इसका आधा प्लेट, जो भी ये भाव बोलते थे उसका आधा में मांगते थे। श्रीधर बोलता था नामुमकिन, कभी मैं दे ही नहीं सकता, नहीं 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 ले जाते थे, श्रीधर को भाग के आना पड़ता था, खींच के लेना पड़ता था, बोला नहीं नहीं दूंगा, बोला ना मैं नहीं दूंगा, अरे पूरी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, जा ना मार्केट में, मेरे को क्यों सताते हो आके। तो महाप्रभु बोलते थे जब मेरे को एक अच्छा सप्लायर मिलता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं छोड़ूंगा कैसे, तू तो बड़े अच्छे सप्लायर हो। तो हमेशा उसको हैरान करते थे और कभी कभी बिना पैसा दिए और कभी आधा पैसा दिए या कभी दो तू कुछ ऐसा कुछ दिए ले जाते थे। कभी कभी महाप्रभु उसको चिढ़ाते थे, बोलते थे श्रीधर तू ये हमेशा कृष्ण 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 क्या नाम लेता है, अरे देख उधर देख सब लोग मंगल चंडी का नाम लेते हैं और कितने सबके पास कितना पैसा है, तू भी पूजा कर, दुर्गा पूजा कर, तेरे को भी बहुत पैसा मिलेगा, तू कृष्ण का नाम ले रहा है क्या, फटे कपड़े है, सोच ले। तो श्रीधर बोलता था आपको इसको क्या लेना मतलब, जाओ आप। बोले नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं देख। तो श्रीधर कहता था कि देखो राजा अपने वस्त्र पहन के घूमता रहता है और एक जो पक्षी है वो अपने क्या बोलते हैं फेदर पंख वो लेके घूमती रहती है, दोनों का शरीर ढकता है ना, फिर क्यों चिंता, शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए वो है मेरे पास बस, और क्यों चिंता करूं, उससे जरूर आयास उसका प्रयास ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, हमको बस हरिनाम लेना है जो है ठीक है। पूरी रात भर जोर जोर से हरिनाम लेते रहता था श्रीधर, तो बगल वाले लोग बहुत चिढ़ जाते थे, बोले इसको काम नहीं है, हम लोग तो दिन भर प्रयास करते हैं, इसको कुछ लगता है, इसको भूख लग रहा है, पेट कूद रहे चूहे पूहे पेट में कूद रहे, इसीलिए दिन भर चिल्लाता है, इसको कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, रात भर चिल्लाता रहता है। तो उसको जोर जोर से गाली देते थे और कुछ सड़ा हुआ जो भी सब्जी था फेंकते थे, खा और सो जा चिल्ला मत। इस तरह से अलग अलग प्रकार से उसको सताते थे लोग। श्रीधर को कोई परवाह नहीं था, वो अपने मग्न रहता था हरिनाम। पर महाप्रभु का एक नियम था, कभी श्रीधर के थाली के अलावा, श्रीधर के जो केले के पत्ते के अलावा किसी दूसरे में नहीं खाते थे, हर रोज उसी के केले के पत्ते लेकर लाते थे और उसी में खाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि एक ऐसा व्यक्ति है। महाप्रभु एक दिन आए और श्रीधर को बोले श्रीधर तू धोखेबाज है। बोले क्यों? बोले हां पूरी दुनिया को तू दिखा रहा है कि तू बड़ा गरीब आदमी है, तू करोड़पति है, बहुत धनी आदमी है, पर तेरे धन को तू छिपा के रखा है, एक दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा तेरा धन कितना है, तेरे पास कितना धनी है, तू लोगों को तू धोखा दे रहा है। बोले नहीं 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 क्या कह रहे हो, ऐसा जो बाहर दो अंदर बस और कुछ नहीं, जाके देख लो मेरे झोपड़ी में कुछ नहीं है। बोले नहीं 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 मुझे मालूम है तू कहां छुपा के रखा है तेरा धन, एक दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। पर भगवान की योग माया के कारण श्रीधर कभी समझ नहीं पाता था। कभी कभी महाप्रभु बोलते थे, निमाय पंडित ने एक बार उसको कहा कि श्रीधर तू गंगा की पूजा करता है, अरे मैं गंगा का मालिक हूं, मेरे चरणों से गंगा निकली है। श्रीधर दंग स्तब्ध रह जाता, विष्णु 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 क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो, हे ब्राह्मण तेरा दिमाग फिकल गया है, तेरे चरण से गंगा निकलती है, तू गंगा का मालिक है, विष्णु विष्णु चले जा यहां से, क्या बोल रहे थे, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। तो इस तरह से योग माया के कारण श्रीधर कभी समझ नहीं पाया ये कौन है ये निमाय पंडित। बाद में जब महाप्रभु ने अपना ये प्रस्तुत किया अपना मूल स्वरूप और महाप्रकाश लीला के दौरान, उससे पहले काशी का उद्धार करने के बाद महाप्रभु ने उस कोलवेच श्रीधर के घर के सामने एक पूरा जंग पड़ा हुआ लोहे का जो लोटा है उसमें जो पानी था उसको महाप्रभु पीने लगे। ये देखकर श्रीधर बोला मैं सर्वनाश हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया कि प्रभु आप इस लोटे से पी रहे हो। महाप्रभु कहने लगे मैं पी रहा हूं मेरी शुद्धिकरण के लिए। और आज के दिन श्रीधर को बुलाए और उसको बहुत सुंदर श्लोकों में प्रभु कहे श्रीधर देखो हो रूपमोर अष्ट सिद्धि दय आज करी दिया तोर। भगवान ने कहा हे श्रीधर मेरे स्वरूप को देखो, आज तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि देने वाला हूं। हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे, अगर मैं कहूंगा आप लोग में से किसी को, आप लोगों को मैं अष्ट सिद्धि देने वाला हूं, क्योंकि हमको किसी को नहीं मालूम अष्ट सिद्धि होता क्या है और होने के बाद अगर आप पा भी गए तो क्या असर पड़ता है। और एक्चुअली जानो, अगर आपको अष्ट सिद्धि मिल जाए, आप अगर चाहे छोटे से छोटा इतना हो जाओगे हनुमान जैसे। लंका में जब गए थे तो इतने छोटे हो गए, कारपेट के अंदर घुस सकते हो। आप चाहे तो बड़े से बड़ा हो सकते हो, कोई गुंडा आपको सता नहीं सकता है, कितना अच्छा रहेगा। छोटे से छोटा कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी प्रवेश कर सकते हो, बड़े से बड़ा बन सकते हो, हल्के से हल्का बन सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, फ्लाइट का चार्ज का जरूरत ही नहीं। अष्ट सिद्धि अणिमा लघिमा महिमा प्राकाम्य, किसी जगह से कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ हाथ जोड़ के बोलेगे मुझे काबुल से फर्स्ट क्लास दालिम चाहिए, अनार आ जाएगा आपके हाथ में, मार्केट जाने की जरूरत नहीं। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी मांग सकोगे आपको मिल सकता है, अष्ट सिद्धि है ये प्राकाम्य। और प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य कर सकते हो आप। एक्चुअली हम जाने या नहीं जाने हमारी पूरी जिंदगी यही चीजों को प्राप्त करने में है। हमको क्यों पैसा चाहिए ताकि हवाई जहाज में जल्द से जल्द यहां से दिल्ली पहुंचे, वो भी एक सिद्धि है, पर वो सिद्धि के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। ज्यादा पैसा रहेगा तो फास्ट ट्रेन में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, क्यों? प्रकृति का नियम, गर्मी है तो ठंडी चाहिए, ठंडी है तो गर्मी चाहिए, ये सब बहुत पैसा मतलब तपस्या। जिसके पास पैसा है वो प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, जमीन के अंदर जा सकता है, ट्यूब रेलवे। तो या हम जाने या नहीं जाने हम सब ये सब कोशिश कर रहे हैं, पूरी जिंदगी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या हमारा तपस्या क्या है? धन प्राप्त करना, ताकि हम ये सब कार्य करें। पर ये हो सकता है हमारी इच्छा यहां बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट चल रहा है वो देखने का, इसीलिए हमको टीवी चाहिए अभी। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है जानना, और ये सिद्धि के लिए पैसा देना पड़ता है। बातचीत करना, मैं वहां बैठे यहीं से बातचीत करूंगा उसको, पैसा देना पड़ता है मोबाइल के लिए, मीटर घूमता रहता है हर एक बार। हो सकता है ये सिद्धि मिला है, कुछ हद तक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धि को प्राप्त किया है, कुछ हद तक, एक ही जगह बैठे बहुत सारा किसी से बातचीत करना, सुनना, देखना, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन तपस्या करके पैसा कमाना चाहता है, ताकि इनमें से कम छोटे मोटे चार सिद्धि मेरे को मिल जाए। अगर इसका पूरा वर्णन करे आपको और आपको सही में कोई पता चले कि ये क्या दे रहा है कोई, तो आप बोलोगे हरे कृष्णा बाद में करेंगे, देव महाराज सब दे दो अष्ट सिद्धि निश्चित रूप से। पर श्रीधर को बताया अष्ट सिद्धि मैं देने वाला हूं, भगवान कह रहे हैं चाहिए। तो श्रीधर ने अपना सर उठाया और देखा भगवान का स्वरूप तमाल, भगवान तो गौर सुंदर है पर तमाल वृक्ष के जैसे काले स्वरूप हो गए थे। उनके हाथों में मुरली थी और बगल में बलराम खड़े हुए थे। श्रीधर ने देखा सब कुछ एक दिव्य इफल्जेंस प्रकाश तेज प्रकाशमान हो गया पूरा वो कमरा। लक्ष्मी जी उनको तांबूल दे रही थी भगवान के हाथों में, और चतुर्मुखी ब्रह्मा उनका गुणगान कर रहे थे, पंचमुखी शिव जी भगवान का गुणगान कर रहे थे, अनंत शेष उनका गुणगान कर रहे थे, और एक छत्री के रूप में उनके ऊपर खड़े हुए थे। सनक सनातन नारद सुखदेव उनका गुणगान कर रहे थे। चारों दिशाओं में सुंदर सुंदर अप्सराएं भगवान के हाथ जोड़कर उनकी नृत्य और प्रार्थना कर रहे थे। ये सब देखने के बाद श्रीधर अद्भुत आश्चर्यचकित रह गया और फिर से वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। महाप्रभु ने कहा, उठो उठो श्रीधर। और श्रीधर ने फिर से जब उसको चेतना आई तो भगवान कहने लगे, श्रीधर मुझे प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना, मेरा गुणगान करो। तो श्रीधर ने कहा, कोन स्तुति जानु मुई के मोर शकति, प्रभु कहे तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। श्रीधर ने कहा, मेरे अंदर क्या क्षमता है प्रभु आपका गुणगान करने के लिए। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हारे शब्द ही मेरे लिए प्रार्थना होंगे, तुम जो भी कहोगे वो मेरे लिए प्रार्थना होंगे। कहो तुम, भगवान के आज्ञा से सरस्वती श्रीधर के जिह्वा पर आकर बैठी और श्रीधर प्रार्थना करना शुरू किए। जय जय महाप्रभु, जय विश्वंभर, जय 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 नवद्वीप परोह पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय शची पुण्यवती गर्भ गर्भजात ते, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड के आप नाथ हो और शची माता के पुण्यवती उसके गर्भ से आप जन्म लिए हो। जय जय वेद गोप्य, जय द्विजराज, युग युग युगे युगे धर्म पायला कोई ना न साज। आपका जय जयकार हो जो वेदों में गुह्य हैं, आपका गुणगान हो, सारे ब्राह्मण आपका गुणगान कहते हैं और आप अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेते हैं धर्म स्थापन करने के लिए और आप पूरे शहर में अनजाने रूप से घूम रहे थे और जब तक आप अपने आप को प्रकट नहीं किए कोई आपको पहचान नहीं पाया। और इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थना कहते हैं। और तब हां फिर महाप्रभु कहते हैं, श्रीधर के दिव्य प्रार्थना को सुनकर सारे वैष्णव आश्चर्यचकित रह गए कि इतने सुंदर, श्रीधर कोई बड़ा विद्वान नहीं था पर इतने सुंदर स्तुति करने लगा श्री चैतन्य महाप्रभु के कि लोग स्तब्ध रह गए। बोले, अरे इतना सुंदर स्तुति कर रहा है श्रीधर के दिव्य। ये सुनकर तत्पश्चात भगवान कहने लगे, हे श्रीधर, प्रभु को हे श्रीधर, वांछिया मागावर अष्ट सिद्धि दई तुम्हारा गोचर। अष्ट सिद्धि देने के लिए तैयार हो, मांगो। श्रीधर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप फिर से मुझे धोखा मत दो, इतने समय तक धोखा देके आए हो। बोले, अब मुझे धोखा मत दो, कृपया आप शांत रहो, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि इस बार आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, फिर भी, यानी कुछ नहीं मांग रहे थे, तो भगवान ने कहा, नहीं, मेरा दर्शन जो है वो निष्फल नहीं जाएगा, तुम्हें कुछ तो वरदान मुझसे मांगना ही चाहिए, मांगो। आप सोच लो, कोई व्यक्ति जिसके अंदर वो शक्ति है, जो भी आप मांगोगे देने के लिए तैयार है और वो मांग रहा है, क्या कहोगे आप? अभी मंदिर में बैठ के भक्तों के सामने सब लोग देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे, शुद्ध भक्ति ऑफ कोर्स। पर अगर अलग से ले जाके बोले, कोई चिंता मत, अभी कोई भक्त सुन नहीं रहा है, बोल क्या चाहिए तेरे को, शायद कुछ और मांगेंगे। तो भगवान ने कहा, मांगो, कुछ तो मांगो। विश्वंभर ने बार बार कहा, मांगो मांगो। और श्रीधर ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप अगर देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए। सुनिए क्या पूछ रहा है श्रीधर, ये ब्राह्मण काड़ी नीला मोर खोल पात, से ब्राह्मण हव का मोर जन्म जन्म नाथ। वो ब्राह्मण जिसने जबरदस्ती मेरे सारे केले के पत्ते छीन के ले गए, जन्म जन्म वो मेरा प्रभु रहे, बस और कोई किसी की मैं शरण नहीं जाऊं, आप मेरे प्रभु रहो बस। जे ब्राह्मण मोर संगे करिला कंदल, मोर प्रभु हौ कातान्द्र चरण युगल। मैं हमेशा उस प्रभु, उस ब्राह्मण की चरण युगल की सेवा करूं जो हमेशा मेरे साथ झगड़ता था। इस तरह से श्रीधर का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो और भी बढ़ने लगा और दोनों हाथ उठाकर वो जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर सारे वैष्णव लोग दिव्य आनंद से वो भी उसका गुणगान करने लगे। विश्वंभर मुस्कुराए और कहने लगे, सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें एक पूरे बहुत बड़े राज्य का राजा बनाना चाहता हूं। श्रीधर बोले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये एक चीज आप इंतजाम करो कि मैं हमेशा तुम्हारा नाम लेते रहूं, मेरे मुख से तुम्हारा नाम हमेशा निकल रहे। श्रीधर तब भगवान ने कहा, प्रभु बोले, श्रीधर आमार आमार तुम्ही दास, इते को देखिला तुम्ही अमर प्रकाश। श्रीधर तुम मेरे नित्य दास हो और इसीलिए ये सब सारा ऐश्वर्य देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारा मन मेरे से तुम्हारा मतलब इधर उधर जा नहीं रहा है। ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरी कृपा है तुम पर, इसीलिए ये मांग मैं मांग रहा हूं और तुम कोई नहीं मांग रहे हो। अनन्याश्चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से तुम मेरी शरण आना चाहते हो, कोई अन्य चीजों तुम्हें आकर्षित नहीं कर रही है, ये मेरी कृपा है जान लो तुम। इसीलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति दे रहा हूं जो वेदों में भी बड़ा गुह्य है। और इस तरह से भक्तगण गुणगान करने लगे। इस तरह से अलग अलग लोगों को महाप्रभु ने गुणगान किया। फिर मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्त को बुलाए और कहे वो, मुरारी रे आज्ञा होयला मोर रूप देखो, मुरारी देखो ये रघुनाथ हो परतेखो। भगवान ने मुरारी को कहा, मुरारी मेरा स्वरूप को देखो। और मुरारी गुप्त जब देखा, उन्होंने प्रभु रामचंद्र को देखा। प्रभु रामचंद्र वहां खड़े थे, उनका स्वरूप जो था दूर्व घास के समान हरे रंग का था और वो वीरासन में बैठे हुए थे एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में, और एक बगल में माता जानकी और एक बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और सारी वानर सेना चारों ओर बैठे हुए थे। मुरारी ने देखा, मैं भी एक वानर बन गया हूं, और भगवान को देखने लगे और बेहोश होकर गिर गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, बोले, हे वानर तू भूल गया, सीता ने सीता को हरण काले करने वाले राम ने तुझे जलाया था, रावण ने तुझे जलाया था। बोले हां। बोले तूने उसका पूरा लंका को जलाया था और उसके पूरे वंश का नाश किया था, मैं कहना चाहता हूं मैं तेरा वही प्रभु हूं। एक्चुअली मुरारी गुप्त जो थे वो हनुमान थे। उठो मुरारी उठो, तुम मेरे प्राण हो और मैं ही वही, मैं रामचंद्र हूं। उठो उठो मुरारी आमार तुम्ही प्राण, आमी से ही राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। मुरारी गुप्त ने देखा, हां मेरा बड़ा पूंछ है, आईना नहीं था सामने पर मुरारी ने देखा कि उनके पूरे शरीर में सुंदर एकदम कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडल कुंजित केशा। अपने आप को देखे बोले, हां अरे, और तुम्हारे प्राणनाथ को देखो, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को देखो, जिनको बचाने के लिए तुमने गंधमादन पर्वत उठा के ले आए थे, और इस तरह से सीता को प्रणाम करो जिसकी दुख को देखकर तुम अपार अश्रुधार किए थे, रोए थे, दुख हुआ था तुम्हें। चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर मुरारी फिर से अपनी चेतना को प्राप्त किए और जोर जोर से रोने लगे दिव्य वाष्प दिव्य आनंद के साथ। और तब विश्वंभर ने मुरारी को कहा कि मुरारी वर मांगो मुझसे, आज मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। सुनिए क्या मुरारी गुप्ता पूछते हैं। हे प्रभु, मुरारी कहे कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बंगाली शब्द सुंदर वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में कहना चाहता हूं। मुरारी बोलो ए प्रभु, आर नहीं चाहे, हे न करो प्रभु ये ना तोरा गुण गाए। बोले कि हे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा आपका गुणगान करते रहूं। हनुमान जी हैं, हमेशा मैं गुणगान करते रहूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षकांत। उनकी यही इच्छा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी रघुनाथ जी की कीर्तन हो वहां मैं रहूं। तो उनकी यही प्रार्थना थी कि जहां मेरी एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपका गुणगान करूं। हे प्रभु, मैं जहां भी मुझे जन्म दो कोई चिंता नहीं, पर मैं जहां भी जन्म लू सिर्फ एक ही वरदान दो कि मैं हमेशा आपका स्मरण करते रहूं। तुम्ही प्रभु मुई दास यह नहीं जात, हे न सत्य करो प्रभु ना फेली होता। हे प्रभु, कृपया ऐसी परिस्थिति में मुझे मत डालो जहां मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे प्रभु हो और मैं तुम्हारा नित्य दास हूं। ऐसा स्थिति में जैसा भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, कीट जन्म हाओ यथा तु या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोराश। आपसे बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जी का जन्म मुझे नहीं चाहिए, पर कीड़े का जन्म मंजूर है मुझे, अगर आपके दास के रूप में, आपके भक्तों के संग में आपका गुणगान चारों ओर होते रहे तो वो चलेगा मुझे। मैं हमेशा आपका सेवक रहूं और जहां भी आपके भक्त और आप प्रकट होते हो आपकी सेवा में मैं लगे रहूं। इस तरह से सारे वैष्णव बहुत ही प्रेम करते थे मुरारी से, क्योंकि मुरारी सब जीवों के प्रति उसका प्रेम था। जहां भी मुरारी जिस जगह से वो संबंधित था वो जगह वैकुंठ बन जाता था। मुरारी गुप्ता एक डॉक्टर थे, प्रोफेशन वैद्य। वो जहां भी निवास करते थे, जिस जगह में भी वो निवास करते थे, वो जगह वैकुंठ बन जाता था। तो मुरारी का गुणगान कौन कर सकता है? हरेक अवतार में प्रभु मुरारी के निकटतम मित्र बनकर, वल्लभ उनको बड़े प्रिय बनकर मुरारी हमेशा जन्म लेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ध्यान से सुनो सब लोग, कोई भी व्यक्ति जो मुरारी का दोष देता है या उसके उसकी निंदा करता है, वो भले करोड़ों बार गंगा में स्नान करे पर न गंगा न हरिनाम उसको शुद्ध कर सकती है। हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, तमस्थाने अपराधे नाही परित्राण। एक शुद्ध वैष्णव की महिमा है, अगर उसका एक शुद्ध भक्त का हम निंदा कर रहे हैं और हजार हजार लाखों बार गंगा स्नान कर रहे हैं और हरिनाम ले रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो भी ठाकुर चैतन्य बोले सुनो सर्वजन, सकृत मुरारी निंदा करे यही जन। अगर एक बार भी कोई मुरारी की निंदा करता है, कोटि गंगा स्नाने तार नाही को निस्तार, गंगा हरि नाम तारे करीबे संहार। बल्कि वो गंगा स्नान और हरि नाम जो है उसका संहार कर देगा। मुरारी गुप्त रूप से तुम्हारे हृदय में निवास कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे नाम है मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्त यानी जिसके हृदय में मुरारी यानी भगवान मूर अक्षसुर को मारने वाले मुरारी हमेशा गुप्त रूप से, और हनुमान जी ने हमें दिखाया है, हृदय फाड़ के दिखाया कौन है उनके हृदय में। अभी गुप्त नहीं रहे वो उन्हें हृदय फाड़ के दिखा दिया कौन है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सबकी इच्छा को इस तरह से पूर्ण कर रहे थे। फिर महाप्रभु ने कहा, दोनों हाथ उठाए और कहे, सब लोग, सब भक्तों से कहे, सब लोग मुझे देखो, और तुम्हें जो इच्छा है मांगो, सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार थे, बोले जो इच्छा है मांगो। तो भगवान के शब्द सुनकर सब आनंदित हो गए और सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ वर मांगने लगे। अद्वैत आचार्य ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सारे मूर्खों पतित लोगों पर आप दया करें। महाप्रभु ने कहा तथास्तु। और कुछ, किसी ने कहा प्रभु मेरे पिता मुझे कीर्तन में आने नहीं देते, सत्संग में आने ही नहीं देते। कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत आई हुई है। मेरे पिता मुझे कीर्तन में आने नहीं देते, सत्संग में आने नहीं देते, कृपया ये वरदान दीजिए कि उनके हृदय में थोड़ा परिवर्तन हो जाए। अपने अपने आसक्ति के अनुसार अलग अलग भक्तों ने वरदान मांगा अपने लिए। किसी ने कहा मेरे शिष्य उसको आप भक्ति दे दीजिए, किसी ने कहा मेरे पुत्र को भक्ति दीजिए, किसी ने कहा मेरी पत्नी को आप भक्त बना दीजिए, किसी ने कहा मेरे सेवक को आप भक्त बना दीजिए, किसी ने कहा कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा पैदा करूं। इस तरह से हरेक व्यक्ति ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार भगवान से वरदान मांगे। पर एक चीज यहां देखने को मिलता है, किसी ने भी अपने लिए स्वार्थ से कुछ नहीं मांगा, ये मांगा कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं या मेरे जो भी निकट जो लोग हैं वो लोग भक्ति में प्रगति करें, बस एक ही इच्छा थी उनकी और कुछ नहीं। विश्वंभर जो सबके शब्दों को सत्य करा सकते हैं मुस्कुराने लगे और सब व्यक्तियों की सब इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे। ये सब हो रहा था पर एक व्यक्ति न उसको महाप्रभु ने बुलाया न वो आया, वहीं खड़ा था। उसकी इच्छा थी आने की पर उसे मालूम था कि जब तक महाप्रभु बुलाएंगे नहीं मैं कैसे आऊं, और वो था मुकुंद। मुकुंद जब श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में गाता था, हम लोग गौर आरती में बोलते हैं ना, संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाया। संजय घोष, मुकुंद घोष और वासुदेव घोष, ये तीन भाई थे। मुकुंद बहुत ही प्रिय था महाप्रभु के पार्षदों के प्रति और महाप्रभु के प्रति, पर आज के दिन सबको वरदान दे रहे थे पर और सबको जो नहीं थे उसको भी याद करके बुला रहे थे, श्रीधर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, पर मुकुंद वहीं खड़ा था एक पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे वहां खड़ा हुआ था, पर महाप्रभु ने उसके देखा भी नहीं उसकी ओर, महाप्रभु तो जानते कौन कहां है, पर बुलाए नहीं, और मुकुंद वहां चुपचाप बैठे हुए रो रहा था। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आपने सब सबकी इच्छा को आप पूर्ण कर रहे हैं पर आपने मुकुंद को नहीं बुलाया। महाप्रभु ने कहा वो पाखंडी मुकुंद, कभी नहीं बुलाना उसे, मैं कभी नहीं उसे दर्शन दूंगा, कभी मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही हिपोक्रेट, मतलब दाम्भिकता है उसके अंदर, वो मायावादियों के पास जाता। नहीं नहीं, वो कहे, महाप्रभु ने कहा एक 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 बार दांत में तृण लेकर मेरे पैर पड़ता है एक क्षण, और दूसरे क्षण लोहे का एक बड़ा गदा लेकर मेरे सर पर प्रहार करता है। बोले इसको मैं कभी कभी नहीं देखूंगा मैं उसका मुंह। तो बोले ऐसे कैसे प्रभु, जब से हम जानते हैं उसने तो कभी ऐसा अपराध नहीं किया है, अगर भी कुछ अपराध किया है तो उसको माफ कर दीजिए, आप तो पतित पावन हैं, कुछ को माफ कर दीजिए। बोले नहीं, ये मैं माफ नहीं कर सकता। बोले ये वैष्णव के पास आता है और वैष्णव के सामने वैष्णव जैसा व्यवहार करता है, पैर छूता है सबका और प्रणाम करता है, सेवकों का सेवक कहता है, और फिर मायावादियों के पास जाता है और कहता है यहां का भगवान निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। ये भगवान, अगर भगवान को कहना, भगवान के बारे में यह कहना कि भगवान का रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, हम किसको कहते? ये अंधा है क्या तू? मतलब अंधा का मतलब क्या, किसी को मतलब एक प्रकार का डांटना जैसा, गाली रहा, अंधा दिखता नहीं तेरे को? तो कहना कि भगवान की आंख नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, भगवान की लीला सब माया है, ये मायावाद है। ये ऐसा था कि पहले मुकुंद महाप्रभु से मिलने से पहले वो एक गुरु के पास जाता था जो मायावादी थे, और उनसे उसने सुना था, पर बाद में वो पूर्ण रूप से महाप्रभु के शरण लिया था। पर महाप्रभु जानते थे, वो भक्तों को नहीं मालूम था, महाप्रभु जानते थे। बोले उसने उस व्यक्ति को मैं कभी चेहरा नहीं देखूंगा। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा क्या कभी ना कभी तो उसको दर्शन दोगे आप? तो यह सुनकर मुकुंद जोर जोर से रोने लगा, पीछे खड़ा हुआ था और रोने लगा। बोले सही बात है, जो कह रहे सही है। पर बोला कि ठीक है, क्या कभी ना कभी तो दर्शन मिलेगा मेरा, महाप्रभु का दर्शन कभी ना कभी तो मिलेगा? तो शिवाश ने पूछा, मुकुंद पूछ रहा है क्या कभी ना कभी आप तो दर्शन करेंगे? बोले उसका दर्शन 1 करोड़ जन्म के बाद मैं करूंगा उसका दर्शन। आप सोचो 1 करोड़ कितना होता है, 1000, 1 में 1 0 लगाओ तो 10 जन्म बोले तो आप सोचो क्या होता है हमारा। अब बोले ये दर्शन आज कर लो, फिर 10 जन्म के बाद, पता नहीं 10 जन्म, एक एक क्षण भी कैसा जाता है हमारा, 10 जन्म, उसमें और 1 0 लगाओ 100 जन्म, उसमें 3 लगाओ 0, 1000 जन्म, और 1 4 लगाओ 10,000, और 1 लगाओ 1,00,000, 6 लगाओ 10,00,000, 7वां लगाओ 1 करोड़। 1 करोड़ जन्म के बाद वो मेरा निश्चय रूप से दर्शन कर सकता है, पर 1 करोड़ जन्म के बाद, क्रोधित होकर महाप्रभु ने कहा। जब मुकुंद ने ये सुना कि महाप्रभु 1 करोड़ जन्म के बाद मुझे दर्शन देंगे, पागल जैसे नाचने लगा हर्षोल्लास के साथ। बोले मैं देखूंगा, पागल जैसे नाच रहा था। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्या बोल रहा है, क्या कर रही है। महाप्रभु मुस्कुराने लगे, बोले मुकुंद को दिलाओ, अभी मैं उसे देखना चाहता हूं। तो मुकुंद आया और शरणागत हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि मायावाद जो है कितना भगवान को दुख पहुंचाता है। कोई बेटा कहे बाप को तू अंधा है, तू बहरा है, तू काना है, तू गूंगा है, तू लंगड़ा है, जिसको पैदा करके बड़ा किया, खिलाया पिलाया सब कुछ, उसके बाद अगर गाली देगा इस तरह से कितना दुख होगा। इस तरह से बद्ध जीवों का सबका उद्धार, सबको सब कुछ अपना मेंटेनेंस दे रहे हैं, पर हम कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, गुण नहीं, लीला नहीं, नाम नहीं। मायावादी भाष्य सुन ले, होए सर्वनाश। भगवान, भक्त और भक्ति, ये 3 सत्य है, और सब पूरी ब्रह्मांड में सब कुछ नश्वर है, पर 3 चीजें का नाश कभी नहीं होगा, भगवान, भक्त और भक्ति, ये 3 परम सत्य है। तो इतना गंभीरता से लेते हैं भगवान, और यह सत्य है, ऐसा नहीं कि उसको परीक्षा ले रहे थे, सचमुच में भगवान ने बोला कि मैं 1 करोड़ जन्म तक उसका मुंह नहीं देखूंगा। पर जिस प्रकार से मुकुंद ने भगवान के वचन को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया, कभी ना कभी तो मुझे महाप्रभु का दर्शन मिलेगा, भले 1 करोड़ जन्म चलेगा पर मैं कम से कम मिलूंगा, कुछ तो निश्चय है। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं धैर्य। हम उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, इसको कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात। अगर आपको कहा जाए पूरी जिंदगी भर आप 16 माला करो पर इस जन्म में नहीं मिलोगे भगवान से, दर्शन नहीं मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है फिर आज मिलेगा नहीं तो करना क्या है, बाद में करेंगे, अगले जन्म में ही करेंगे, स्वाभाविक है, अगले जन्म मिलेगा तो अगले जन्म में शुरू करेंगे, अभी क्यों करना है, क्यों इतना फिर तकलीफ। मुकुंद को बोला जा रहा है कि 1 करोड़ जन्म के बाद तुम भगवान का, पर भगवान के मुख से निकला कि तुम मुझे देखोगे, ये शब्द पर निश्चयात विश्वास, कि भगवान के मुख से निकला है मतलब आप समझिए कि भगवान का दर्शन या भगवान का सेवन सेवा शुद्ध भक्ति कितना दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यत सिद्धये यतताम सिद्धां, कितना दुर्लभ है कि मुकुंद 1 करोड़ जन्म उसके लिए कुछ भी नहीं, अगर 1 करोड़ जन्म के बाद मुझे निश्चय है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। और उत्साह, क्या उत्साह, अभी से उत्साह 1 करोड़ जन्म से पहले के दर्शन मिलेगा। और धैर्य, धीरज, खोया नहीं, अरे 1 करोड़ बहुत लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी करो ना, नहीं, धैर्य, पेशेंस, कितना धीरज। तो यह देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारा यह निश्चय, तुम्हारा उत्साह और यह धीरज देखकर, यह एक चीज जो है करोड़ों जन्मों के जो पाप थे तुम्हारे सब जल के राख हो गए, अपराध थे तुम्हारे सब जलकर राख हो गए। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह एक ऐसी अग्नि है, भक्ति में उत्साह जो है एक अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के बीज जो कर्म बीज है उसको जला के राख कर देता है। यथै धान से समिद्धोग निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते, तथा भस्म कर देता है वो। तो ये भक्ति की शक्ति है उत्साह निश्चय धैर्य बुलाए तो सब भक्त लोग भागे, मुकुंद मुकुंद अरे भगवान बुला रहे आओ, महाप्रभु बुला रहे तुम्हें, पर उसे क्या, वो तो अपने मग्न था, मैं देखूंगा 1 करोड़ जन्म में, किसी तरह से उसको पकड़ के लाए, अरे 1 करोड़ नहीं अभी देख बुला रहे तुम्हें, लाए और लाकर भगवान के सामने बैठाया उसको, और फिर वो भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, पश्चाताप की आंसू निकल रही थी उसकी आंखों से, और कहने लगा कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ये सही बात है आपने कहा कि मैं ऐसा संग किया था और मेरे हृदय में ऐसे विचार आ रहे थे, मैं देख रहा हूं आपको पर देखने से क्या फायदा, सिर्फ इस चर्म चक्षु से देखने से क्या फायदा, भगवान को देखने से क्या फायदा, जहां तक देखने का सवाल है, अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो भगवान को देख के भी क्या फायदा। कितने लोग आते हैं देखते हैं पर देख नहीं पाते, पश्यन्नपि न पश्यति, एक्चुअली आंखों से नहीं देखते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, हृदय में जब भक्ति होगी तब भगवान का दर्शन कुछ मतलब का होता है, प्रभु देख के क्या फायदा, जहां तक हृदय में भक्ति नहीं है, जहां तक देखने का सवाल है, दुर्योधन ने आपको देखा, आपका विराट स्वरूप ने दुर्योधन में भी देखा, पर क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं थी उसका नाश हो गया, उसके पूरे वंश का नाश हुआ। जब आप रुक्मिणी देवी को अपहरण करने गए थे विदर्भ में, तब सारे राजा वहां एकत्र हुए थे, उन्होंने आपको देखा, पर क्योंकि आपके प्रति उनको घृणा थी, विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं था, भक्ति नहीं थी, कोई फायदा नहीं हुआ, सबके सब लोग मारे गए, किसी के हृदय में सुख अनुभव नहीं हुआ आपका दर्शन से। जब आप सुंदर स्वरूप वराह देव के रूप में आए और पृथ्वी को आपने उठाया समुद्र से, हिरण्याक्ष ने आपको देखा, पर क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं थी, आपको शरण जाने के बदले प्रहार किया अपने गदा से साथ और मारने का कोशिश किया। जो देवता भी दर्शन करते करना चाहते हैं, ऐसा सुंदर नरसिंह देव का स्वरूप आपने जब दिखाया, हिरण्यकशिपु ने देखा उसको, पर शरणागत होने के बदले, भक्ति हृदय में ना होने के कारण उसने आपको शरण जाने के बदले आपको मारने का प्रयास किया। पर कुब्जा कंस की सेवा कर रही थी, पर जब आपने उसे मांगा उस चंदन को जो वो कंस के लिए ले जा रही थी, उसने बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक उस चंदन को कंस के बदले आपको समर्पण कर दिया और उसका जीवन सफल हो गया। ब्राह्मण की पत्नियां, उनके पति कर्मकांड में फंसे हुए थे, वो आपके लिए दर्शन करने नहीं आई, पर उनकी पत्नियां सब कुछ छोड़कर आपको आपके लिए दर्शन करने आई, सारे यज्ञ की सामग्री लेके आई, उनका जीवन सफल हो गया। सुदामा जो कंस के राज्य में मथुरा में फूल बेचता था, जब आप बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गए और उनसे वो फूल की एक माला मांगे, तो उसने सबसे अच्छा माला अपने दुकान से लेकर आपको अर्पण किया और आपने उसका जीवन सफल कर दिया। पर वही कंस आपका दर्शन किया पर मारा गया हो, तो प्रभु ये सिर्फ भक्ति है जिसके द्वारा कोई आपका दर्शन कर सकता है, कोई आपको समझ सकता है, कोई दिव्य आनंद का अनुभूति कर सकता है। भक्ति की शक्ति के कारण ही अनंत देव पूरे ब्रह्मांड को ऐसे पकड़ के रखे हैं मानो सर के ऊपर कोई राई का दाना हो। हालांकि अनंत देव के नीचे कोई आश्रय नहीं है, पर वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को आश्रय देके खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह हमेशा भक्ति पूर्वक अपने अनंत मुख से आपका अनंत गुणगान हमेशा करते रहते हैं और वो भक्ति की शक्ति के कारण इस अनंत ब्रह्मांड को अपने सर पर लेके धारण कर सकते हैं। आपकी भक्ति के कारण शंकर को गौरी का पति बनने को मिला, आपकी भक्ति के कारण नारद मुनि सारे ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, व्यास देव सारे ग्रंथों की रचना करने पर भी अतृप्त थे, पर जब नारद मुनि ने बताया इसलिए तुम अतृप्त हो व्यास, क्योंकि तुमने सही तरीके से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति का गुणगान नहीं किया है, और जब व्यास देव ने भागवतम की रचना की और अच्छे तरह से आपका गुणगान किया, तब न केवल वो तृप्त हो गए बल्कि आपकी भक्ति का पूरे संसार में उसका उद्धार किया, पूरे संसार को भक्ति का संदेश देकर। इस तरह से मुकुंद रोने लगे और कहने लगे, प्रभु मैं आपको देख रहा हूं पर क्या फायदा देखकर, जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तो क्या फायदा देखना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुकुंद तुम जो भी कह रहे हो वो सत्य है, ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे जिह्वा के द्वारा मैं ये कहला रहा हूं पूरे दुनिया के लिए। जब तक किसी के हृदय में भक्ति नहीं होती, वो जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती उसकी ओर मेरी कृपा नहीं बहती, और जिसके हृदय जिसकी ओर मेरी कृपा नहीं बहती वो मुझे देखने पर भी अपने अंतरंग में उसको सुख की अनुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं होती। जिसके हृदय में भक्ति है वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकती है। पर मुकुंद मैं तुम्हें कहने चाहता हूं, जब भी तुम कीर्तन करते हो हमेशा मैं तुम्हारे जिह्वा पर प्रकट होऊंगा, उस कीर्तन में मैं प्रकट होऊंगा, उस जगह पे मैं रहूंगा, और ये मैं कहना चाहता हूं तुम्हें, जहां भी मैं अवतार लूंगा वहां तुम हमेशा मेरे साथ आओगे एक कीर्तनिया के रूप में, गायक के रूप में। मुकुंद, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो, और जितना तुम मेरे लिए प्रिय हो उतने ही वैष्णवों के लिए भी तुम प्रिय हो जाओगे। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति भी इस कथा को बड़े ध्यान से सुना है वो बहुत अच्छा गायक बन जाएगा भगवान के कीर्तन में। आप लोग जितने लोग भी हैं गायक बनने वाले हैं अगर आपने भक्तिपूर्वक सुना है तो, नहीं भी है तो आपका रिहर्सल करते करते ये कथा को बार बार पढ़िए श्रद्धापूर्वक, गायक बन जाएंगे आप। और अंत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो ये सारे विषयों को बड़े इसको श्रवण करके बड़ा आनंद लेता है बहुत जल्द चैतन्य महाप्रभु को साक्षात्कार अपनी आंखों से देखेगा। वृंदावन दास ठाकुर का वरदान है, जो भी इस कथा को बड़े आनंद पूर्वक श्रवण किया है बहुत जल्द ही वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को फेस टू फेस, जैसा मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हो, ऐसे आप महाप्रभु को देखोगे और महाप्रभु आपको देखेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो इस तरह से इस सुंदर लीला के द्वारा हम ये देखते हैं कि किस प्रकार यही तो आख्याने को ही दुहार महिमा प्रभुर भक्त वात्सल्य और भक्तेर प्रेम सीमा, और यही प्रेम कुछ चीजें हम देखने को आता है इस लीला के दौरान, भगवान किस प्रकार के भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, और दूसरी बात कि भक्तों के हृदय में क्या इच्छा है। जब तक भगवान उस व्यक्ति को दिखाते नहीं पूरे दुनिया को तब तक हम जान नहीं पाते कि कौन क्या है। पर हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए जैसे इसकी शुरुआत में बताया गया है कि प्रभु हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छाएं ना रहे। भौतिक इच्छा का मतलब क्या, इस भौतिक संसार में कोई भी इच्छा है ये इच्छा का केंद्र है, मैं भोगता हूं और ये भोग्य है। ये आप ध्यान से सुनिए, मैं भोगता हूं और ये मेरे लिए भोग्य है, इसीलिए मैं इच्छा करता हूं, ये मुझे चाहिए ताकि मैं इसका भोग करूं। आध्यात्मिक इच्छा मतलब क्या, मैं सेवक हूं और ये मेरा सेवा है, ये सेवा मुझे मिले। और कौन सा सेवा, अगर मैं सेवक हूं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं दास हूं प्रभु की सेवा मुझे मिले बस, क्योंकि उसमें जो आनंद है वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो संपूर्ण रूप से हमें तृप्त करा सकता है। यही एक चीज बार बार इन लीलाओं में इस कथाओं में खास करके इस प्रसंग में उभर आता है। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। कल गौर पूर्णिमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, महाप्रभु आए ये प्रेम बांटने के लिए। ये हर रोज उपलब्ध है पर खास करके उनका जो जन्म दिवस है आविर्भाव दिवस महाप्रभु के, वो दिवस उनसे अभिन्न है। और उस दिन अगर इस प्रकार की भावना से प्रार्थना से हम उनके सामने आएंगे और श्रद्धालु भक्तों के साथ प्रार्थना करेंगे उनसे, तो निश्चित रूप से फिर हम वही नहीं रह पाएंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा ही। यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन, वही व्यक्ति नहीं रहोगे आप। कल 11 तारीख है, 11 तारीख यहां आए और पूरा दिन बिताए, 12 तारीख को आप वही व्यक्ति नहीं रहोगे। सोच लो आना है कि नहीं आना है, शत प्रतिशत ये महाप्रभु की कृपा है, ये महाप्रभु का दिस इज द ग्लोरी ऑफ महाप्रभु, महिमा है ये महाप्रभु की। तो कल हम और थोड़ा एक व्यक्ति के बारे में हमने खास करके चर्चा नहीं किया, और वो है इस लीला के दौरान उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया, और हरिदास ठाकुर के साथ जो लीला हुई, हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा, इसके बारे में कल थोड़ा चर्चा करेंगे। महाप्रभु के आविर्भाव और साथ साथ में ये हरिदास ठाकुर के प्रति उनका आदान प्रदान, कल हम इसके बारे में चर्चा करें। हरे कृष्ण। अभी हम सची सुताष्टकम करेंगे, उसके बाद सब प्रसाद है। तो सची सुताष्टकम में कृपया उसके मतलब को आप पढ़िए और बड़े भावनापूर्वक हर एक शब्दों को उच्चारण कीजिए। जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के बाद यह रचना की, ये बहुत सुंदर है, इसका ध्यानपूर्वक कीर्तन कीजिए।
समोर येणार आहोत।